ओम शांति। मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से बोल रहा हूं। आज ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग की तरफ से ये जो सेशन हम चर्चा करने वाले हैं, इसका नाम है काम इन द क्राइसिस। वर्तमान समय पूरे भारत में और पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 जो क्राइसिस है उसके वजह से बहुत सारे समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के अंदर डर है कि कहीं मुझे कोविड नहीं हो जाए। एक घर में सबको कोविड हो जाता है तो उनके सामने समस्या है। इकोनॉमी अफेक्ट होती जा रही है, ट्रैवलिंग अफेक्ट होती जा रही है, कई लोगों के जॉब जा रहे हैं, तो ये सब क्राइसिस है। और आज का टॉपिक है कि इन क्राइसिस के समय पर हम कैसे शांत रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि काउंसलिंग के लिए पूरे भारत से ही नहीं देश विदेश से भी मुझे कॉल आते हैं, क्योंकि वो टीवी पर हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो हमारा नंबर जाता है और वो कॉल करते हैं इस आशा से कि हमको कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसमें मैं देख रहा हूं कि क्राइसिस के वक्त शांत रहना सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो क्राइसिस के वक्त अपने आप को स्टेबल और स्थिर रख पाते हैं। मेजॉरिटी लोगों के ऊपर शरीर और मन के ऊपर उसका असर आता है। तो क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम क्राइसिस के वक्त शांत रख पाए, अपने आप को स्टेबल रख पाए? तो कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने रखूंगा ताकि ये पूरा सेशन आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने जीवन को या करीबी दोस्तों को देख सकते हैं और उसमें से हम टिप्स निकालेंगे। पहला जो केस स्टडी है वो मुंबई का ही मैं देना चाहूंगा। मुंबई की एक बहुत दुखद घटना है कि मुंबई में एक जगह पर एक टेम्पल था छोटा, जिसका पुजारी बहुत सालों से उस मंदिर की पूजा करता था, साफ सफाई करता था। अभी जैसे ही ये कोविड-19 लॉकडाउन चालू हुआ तो मंदिर बंद हो गए, लोगों का आना बंद हो गया। उन्होंने राह देखा, एक दिन, दो दिन, 15 दिन, एक महीना हुआ, कोई आया नहीं। और वो पुजारी अपने गांव जाना चाहता था लेकिन गांव जाने की भी सुविधा नहीं हो पा रही थी शुरुआत के दिनों में। तो फ्रस्ट्रेट हो गया, निराश हो गया और फिर उस पुजारी ने ऐसा कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए। उस पुजारी ने जहां पर वो इतने साल से मंदिर की पूजा कर रहा था वहां पर ही उसने अपने आप को लटका लिया, फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया। बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हमारे लिए था। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब क्राइसिस होता है तो व्यक्ति का जो धीरज होता है वो छूट जाता है। कोई तो चाहिए जो उसको धीरज दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके या उसको शक्ति दे सके ताकि वो आने वाले परिस्थिति को हैंडल कर सके। दूसरा केस स्टडी मैं बताना चाहूंगा, ये भी मुंबई का है। हम सब जानते हैं एक्टर एंड एक्ट्रेस बॉलीवुड के, जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो ये बहुत फेमस एक्ट्रेस अमेरिका से पढ़ी, लेकिन रिलेशनशिप्स में जो भी मनमुटाव, अनबन या फेलियर आप कहो, उसके वजह से फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने भी अपने जीवन को खत्म कर दिया। हालांकि इनका करियर बहुत अच्छा था। तो यहां पर ये दोनों केसेस में हम एक ऐसी पर्सनालिटी को देख रहे हैं जिनको हम अंग्रेजी में इम्पल्सिव कहते हैं। इम्पल्स माने अंदर से वो भावना आती है और उस भावना में बह के चले जाते हैं। क्राइसिस के वक्त जितना व्यक्ति शांत होगा, स्थिर होगा, उतना इस भावनाओं को वो हैंडल कर पाएगा। मैं जब भी यूथ को खास करके लेक्चर लेता हूं मोटिवेशन, उसमें एक कोटेशन मैं हमेशा दिखाता हूं जो मेरा बहुत फेवरेट है। जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररली अपसेट डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। आप अपसेट होते हैं किसी भी कारणवश, आप परमानेंट डिसीजन मत लो, क्योंकि उस अपसेट अवस्था में लिया हुआ निर्णय ज्यादातर गलत होता है। उस समय होल्ड ऑन करो। होल्ड ऑन ये शब्द भी बहुत सुंदर है। होल्ड में चार शब्द है, या हॉल्ट शब्द ले लो, हॉल्ट, हंग्री एंग्री लोनली एंड टायर्ड। इस समय हमारे निर्णय गलत होते हैं तो धीरज छूट जाता है। तीसरा केस स्टडी मैं पश्चिम बंगाल का लूंगा। ये सब मुझे फोन कॉल आए कोविड-19 के दौरान, पिछले 6 महीने की बात मैं कर रहा हूं। अभी ये भाई, इन्होंने मेडिटेशन का भी कोर्स किया है, 5 साल से अभ्यास कर रहा है मेडिटेशन का, लेकिन इनका जॉब है स्कूल में बक्से बनाना, जो बैग्स लेते हैं बच्चे। अभी स्कूल बंद है तो बैग्स का डिमांड नहीं है, तो इनकम नहीं है। घर बनाने के लिए लोन लिया और लोन का पैसा चुकता करना है, अभी जॉब नहीं है तो बहुत चिंता है, डिप्रेशन में गया। और उन्होंने फिर कुछ लोगों को फोन पे बात की, तो एक भाई ने उनको जवाब दिया कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास पैसा आते जा रहा है, ऐसे संकल्प करो। और वो भाई कह रहा है ये संकल्प मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं पैसा जुटा नहीं पा रहा हूँ, लोन चुक तो नहीं कर पा रहा, ये संकल्प बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी, नहीं हो रहा था। तब उन्होंने हमसे बात किया और उनको कुछ हमने टिप्स दी जो हम लास्ट में देखने वाले हैं। आज वो भाई स्टेबल है, हालांकि परिस्थिति दूर नहीं हुई लेकिन वो स्टेबल है। उसको कुछ हमने बातें बताई और वो हैंडल कर रहा है अपने स्ट्रेस को। हालांकि उनके अंदर भी आत्महत्या के विचार आ रहे थे, क्योंकि बीवी है, माँ है, बूढ़ी माँ, और घर का लोन चुकता करना है, खाने के प्रॉब्लम्स है। तो ये परिस्थिति है, हमने रिलेशनशिप्स की परिस्थिति देखी, अकेलापन देखा और आर्थिक परिस्थिति देखी। और एक आर्थिक परिस्थिति का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, और ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं भारत में बिजनेसमैन एक है जिनका नाम है विट्ठल कामत। अभी इनका बहुत बड़ा चेन ऑफ होटल्स, और बिजनेस में काफी लोन लेना पड़ता है, तो इन्होंने भी कुछ लोन लिया था। वो लोन बढ़ते 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 गया और एक ऐसा समय आया कि विट्ठल कामत जी के ऊपर 282 करोड़ का लोन हो गया, कर्जा हो गया। अब ये चुप्पू कैसे करें, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो डेफिनेटली ये क्राइसिस है, आर्थिक क्राइसिस। उस समय विचार नेगेटिव चलने लगे और उन्होंने सोचा कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इससे तो मर जाना अच्छा है। तो उन्होंने आत्महत्या का भी निर्णय लिया। अभी आत्महत्या करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी, खुद को खत्म करना, क्योंकि खुद से इंसान बहुत प्यार करता है। लेकिन जब ये ट्रायड हम कहते हैं होपलेस हेल्पलेस एंड वर्थलेस, माना इंसान जब ये क्राइसिस आता है तो होपलेस फील करता है कि कोई आशा दिखाई नहीं देती, आशा की किरण, और हेल्पलेस कोई मेरी मदद नहीं कर सकता इसमें, और वर्थलेस मैं किसी काम का नहीं हूं, ये डिप्रेशन का ट्रायड है। तो उन्होंने निर्णय लिया, अपने सबॉर्डिनेट को कहा कि शराब की बोतल निकालो, क्योंकि हिम्मत चाहिए। किसी ने बोला था कि शराब पीने से ताकत आती है, हालांकि ये भी झूठ है, वो टेम्पररी इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर का। और वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो इंसिडेंटली देखो कैसे जीवन बदल सकता है एक क्षण में। वो जिस एरिया में उनका बिल्डिंग था वो 22 माले की बिल्डिंग, मुंबई में 4 इलाका। अभी उस बिल्डिंग को कलर करने वाला एक पेंटर, आपने देखा होगा ऊंची इमारतों में जो पेंटिंग करते हैं, रस्सी के सहारे वो नीचे आते हैं और उसके ऊपर बैठकर वो पेंटिंग करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो देख रहे थे कि अगर ये पेंट करने वाला भाई जरा भी इसका बैलेंस चला जाए तो नीचे गिर के मर जाएगा, कुछ 1000 सैलरी के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। तो उनको प्रेरणा आई, उन्होंने उस पेंटिंग करने वाले से प्रेरणा लिया और सोचा कि अगर ये अपने जीवन को खतरे में डाल के चला रहा है तो मैं 282 करोड़ कर्जे से क्यों डर रहा हूं। और उन्होंने अपना डिसीजन बदला उस भाई को देख के, और फिर से मीटिंग किया, यथार्थ लोगों से बात किया और प्लानिंग करके धीरे धीरे अपना 282 करोड़ रुपए का कर्जा पूरी तरह से चुक्त किया और आज वो डेब्ट फ्री है टोटली। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी से प्रेरणा लेके बातें करके क्राइसिस के अंदर शांत रह के उस परिस्थिति से बाहर निकल आना। चौथा उदाहरण जो मैं आपके सामने देना चाहता हूँ वो युद्ध का है। इस समय और एक बड़ी समस्या कोविड के साथ हम देख रहे हैं, वो माना जॉबलेस, जॉब्स नहीं है। कई लोगों को जॉब से निकाला गया है, कई लोगों का जॉब बंद है। हमारे एक सिविल इंजीनियर है, उनका जॉब पूरी तरह से बंद है। कई सारे कंपनियों ने इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप है, उनका इवेंट मैनेजमेंट क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, उनका जॉब बंद है। तो हम देख रहे हैं कि ये लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं इस क्राइसिस में शांत रहने का। तो ऐसे एक यूथ जिसको जॉब नहीं है, बहुत डिप्रेस हो गया और उसके अंदर भी आत्महत्या के विचार आ गए। पर उसका भाग्य अच्छा था कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से फोन पे बात किया और उनको कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मुझे अच्छा रास्ता बताओ, क्योंकि आत्महत्या करने का भी डर होता है। तो ये डॉक्टर बहुत अच्छे काउंसलर, उन्होंने देखा कि ये लड़का डिस्टर्ब है और इसको बचाया जा सकता है। पहले तो उन्होंने सब बताया उनको विधि, फिर देखा कि इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने परमात्मा को याद किया और एक अच्छा विचार उनके अंदर आया। उन्होंने इस युवा को कहा कि देखो भैया, तुमको मरना है तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो उसने कहा क्या? तो उस डॉक्टर ने कहा यहां से बॉर्डर नजदीक है, तुम बॉर्डर पे जाओ, दुश्मन को गोली मार के मरो, कम से कम देश के लिए शहीद होके तो मरो। अभी उसकी आंखें चमक गए और उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाओ। इस डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरी तो कोई पहचान नहीं है। डॉक्टर ने इस लड़के के लिए कर्नल से बात किया, उस कर्नल ने इस लड़के को रखा अपने पास क्योंकि इसका हाइट बॉडी अच्छा था और देखा कि धीरे धीरे इस लड़के का मूड अच्छा होते जा रहा है। और ये बात मैं आपको 20 साल पहले भी सुना रहा हूँ, वो लड़का आज भी बॉर्डर पर भारत देश की सेवा कर रहा है, उसने आत्महत्या नहीं की। तो दो नेगेटिव एग्जांपल, दो पॉजिटिव एग्जांपल, समय की सीमा को देखते हुए ऐसे तो बहुत सारे केसेस हम आपको सुना सकते हैं, लेकिन ये केस स्टडीज इसलिए सुना रहा हूं मैं कि आप इसके साथ आइडेंटिफाई कर सको। हो सकता है आप में से कोई इस समय अकेलापन फील कर रहा हो, अकेलापन, और आपको लगता हो कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। हो सकता है आपके सामने भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आपको चिंता सता रही हो कि हमारा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। जैसे मेरे सामने अभी बहुत पेरेंट्स हैं जिनको स्कूल की फीस भरने के प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल स्कूल की फीस बहुत होती है। तो क्या आपको ये चिंता सता रही है? कुछ लोग हैं खास करके डायबिटीज वाले और हार्ट डिसीज वाले, उनको भी ये चिंता है क्योंकि वो बार बार न्यूज में पढ़ रहे हैं कि डायबिटीज या और कोमॉर्बिडिटीज होते हैं जिनको हार्ट की बीमारी, उनको अगर कोविड हो जाए तो उनके बचने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। वो भी चिंता सता रही, कहीं मुझे और मेरे परिवार को कोविड होने जाए और फिर हो गया तो उसका खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल पे बहुत होता है। तो ये सब क्राइसिस हो सकता है आपके लाइफ में भी हो। रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं तो पति पत्नी के बीच झगड़े और मन मुटाव हम देख रहे हैं। मैं खुद, मेरे पास एडिक्शन के केसेस इस कोविड 19 क्राइसिस में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अकेलापन है, खुशी नहीं है, लोगों से मिल नहीं सकते तो नशा करते हैं, नशे के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब मल्टीपल क्राइसिस हो सकते हैं इंडिविजुअल या कंपनी में और एट लार्ज इन अ सोसाइटी, और ये सत्य है, आप इससे दूर नहीं भाग सकते। हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात हम मैनेजमेंट में कहते हैं, देयर इज नो लॉक विदाउट अ की, ताला है मतलब चाबी होनी चाहिए, समस्या है, क्राइसिस है मतलब समाधान होना चाहिए। आज तक हम देख रहे हैं इतिहास को अगर देखें तो बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आई लेकिन फिर भी लोगों ने उसका समाधान निकाला। अनाज की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज हमारे पास पर्याप्त अनाज है सबके लिए खाने के लिए। भूखमारी बहुत बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या थी, एजुकेशन की समस्या थी। धीरे धीरे हमने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्याओं को हम कंट्रोल करते जा रहे हैं। कोविड-19 भी एक समस्या है। अभी हम उस फेज में है कि इसका वैक्सीन डेवलप हो रहा है फाइनल स्टेज में, और वैक्सीन आएगा तो हम सब इम्यूनाइज हो जाएंगे। केवल ये बात है पेशेंस रखने का, और यही व्यक्ति का छूट जाता है। तो सबसे पहली बात, हमको अपने आप से बात करना चाहिए कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है, लेकिन ये अंत नहीं है। इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ पेन। ये थोड़े समय के लिए रहेगी, मुझे तब तक अपनी हिम्मत रखनी है, धीरज रखना, ये बात करना पड़ेगा। और आप अकेले नहीं रहो, आपको किसी ना किसी के साथ बात करनी चाहिए। जैसे मेरे पास केसेस आते हैं तो मेरे से बात करते हैं, जब उनको एम्पथी मिलती है तो वो शक्तिशाली अनुभव करते हैं। साथ में मेडिटेशन करते हैं तो और अच्छी तरह से वो स्टेबल रख पाते हैं अपने आप को परिस्थिति। तो पहली बात कि ये समस्या है और इसका समाधान है, सिर्फ समय की बात है, तब तक मुझे हिम्मत रखना, ये अपने आप को बार बार याद दिलाना। दूसरा, क्राइसिस के वक्त देखा गया है कि लोग स्ट्रेस रिस्पांस में जाते हैं। मेडिकली हम सब जानते हैं, समय के अभाव से मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। जब भी परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर की डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है, जो हमको बचाने की कोशिश करते हैं, इसको हम स्ट्रेस रिस्पांस कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ये तैयार होते हैं, और वो हमको परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। या तो हम सामना करते हैं या भाग जाते हैं, इसके लिए तैयार करते हैं। तो हमारे अंदर ये केमिकल्स तैयार होते हैं, और इसको माइंड के लेवल पर देखा जाए तो क्राइसिस के वक्त बहुत कम लोग होते हैं जो पॉजिटिव और स्टेबल रह पाते हैं। मेजोरिटी लोगों के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं और ज्यादातर निगेटिव संकल्प चलते हैं। तो दूसरा टिप्स मैं देना चाहूंगा, बार बार अपने आप को याद दिलाओ, क्योंकि ऐसे समय पर जो विचार चलते हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या होगा, मेरे परिवार का क्या, जॉब मिलेगा या नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह, तो ये सब जो है वो केवल विचार है, और विचारों को बदला जा सकता है। तो अपने आप से दूसरा थॉट दो कि इस समय मेरे जो विचार चल रहे हैं, इन विचारों को बदला जा सकता है। विचारों से भावना निर्माण होती है, और विचार बदले तो भावना भी बदल जाती है। ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, कॉग्निटिव इक्वेशन हम कहते हैं। डॉक्टर वेन डायर, जो बहुत फेमस राइटर मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। हालांकि ये पुराना है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पॉपुलराइज किया। उनका इंटरनेशनल बेस्ट सेलर इरोनियस जोन्स करके किताब, उन्होंने कहा थॉट लीड्स टू फीलिंग्स, थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल, इट मीन्स फीलिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल। विचार से भावना बनती है, विचार हमारे नियंत्रण में, इसका मतलब भावनाएं भी हमारे नियंत्रण में है। हमने देखा क्राइसिस में व्यक्ति का भावनाओं के ऊपर का नियंत्रण खो देता है, या गुस्से की भावना, या निराशा की भावना, या डर की भावना उसको लेके जाती है, और वो यथार्थ निर्णय नहीं पाता है। क्राइसिस के वक्त जितना शांत रहेंगे उतना क्लैरिटी रहेंगे, लेकिन शांत रहने के लिए इन विचारों का जो तूफान है उनको शांत करना पड़ेगा। और विचारों को या विचारों के तूफानों को शांत करना है तो अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आपका डिसीजन यथार्थ हो सकता है। कुछ लोगों में नेचुरली ये कला रहती है, मेजॉरिटी लोगों को ये डेवलप करना पड़ता है। अफकोर्स हमारे पास जो केसेस आते हैं वो डेफिशिएंट कोपिंग मैकेनिज्म वाले, मैंने परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता कम होती है, ऐसे लोग आते हैं जिनको कि सहारा चाहिए होता है। तो यस, अपने आप से बात करो कि ये केवल एक विचार है और विचार को बदला जा सकता है। मैं अकेला इस समय नहीं इस परिस्थिति से जा रहा हूं, बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से जा रहे हैं, और कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रहती है। मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जो मेरे नियंत्रण में होता। क्या है, क्राइसिस के वक्त व्यक्ति को सोचता नहीं हो क्या करें। जैसे वो पश्चिम बंगाल का मैंने आपको उदाहरण दिया, उस व्यक्ति को सूझ नहीं रहा था क्या करो, उसको सब एंड्स क्लोज दिखाई दे रहे थे। जब सब एंड क्लोज दिखाई देते तब आत्महत्या का विचार व्यक्ति करता है। ऐसे समय पर आपको प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ बात करना चाहिए। प्लीज टॉक टू समवन एंड डू समथिंग एक्टिवली। किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए ताकि वो विचार नहीं आए, क्योंकि ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में विचार जाते हैं। इनको हम एंड्स कहते हैं, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। ये अपने आप चलते और हमको काटते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं। इसलिए अपने आप को पूरी दिनचर्या बनाओ, सुबह से रात तक आपको क्या क्या करना है उसमें बिजी रहो। अगर आप कर सकते हो तो घर में एक्सरसाइज करो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल हमारे पास एक भाई आया, वो 60 प्लस बुजुर्ग है, लेकिन वो जूम के ऊपर या जो भी गूगल मीट है इसके ऊपर 40 लोगों का डेली एक्सरसाइज लेते हैं। जो पहले गार्डन में एक्सरसाइज, आज वो मोबाइल पे खुद ले रहे हैं। खुद भी फिट है औरों को भी फिट रख रहे हैं। एक्सरसाइज मॉस इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि उसमें हमारे ये जो हार्मोन्स है यूज हो जाते हैं और हम तैयार हो जाते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छा एंटीडोट है स्ट्रेस को मैनेज करने का। कुछ ना कुछ प्लान रखो दिन भर में, और सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप किसी की मदद करो अगर संभव हो तो, बातें करो। मुझे पता है घर से बाहर निकलना मुश्किल है उनके लिए, लेकिन जो निकल सकते हैं निकले अपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो भी प्रिकॉशन लेना उसके साथ में। जैसे डॉक्टर्स हम देख रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर रिलेटेड स्टाफ, पुलिस कर्मचारी है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कई लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मन और बुद्धि कुछ ना कुछ कर रही है। तो अपने आप को बिजी रखें। सबसे अच्छा तरीका मैं कहूंगा कि आप मेडिटेशन करो। कई लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब 20-25 मिनट कुछ करना है, ऐसे नहीं है। मेडिटेशन इज एन एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, ये जीवन के प्रति का दृष्टिकोण है। और निरंतर मेडिटेटिव स्टेज में हम रह सकते हैं विद प्रैक्टिस, ओवरनाइट नहीं होगा। ये सब हमारे पैटर्न्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम, इसको बदलने में टाइम लगता है। थोड़ा समय अपने आप को दो और ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करो। मेरे वैयक्तिक जीवन में मैंने बहुत लोगों को काउंसलिंग करने के निमित्त बना जो एडिक्ट्स है, और मैंने देखा जो बहुत टफ पैटर्न होता है वो भी चेंज हो गया, पर निरंतर मेडिटेशन के अभ्यास से और काउंसलिंग से। तो मैं चाहूंगा कि आप नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर को संपर्क करें या इस मेडिटेशन का अभ्यास करें। अभी हम 5 मिनट के लिए समय सीमा को देखते हुए इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। क्या विचार लाने चाहिए जिसके वजह से हम शांत हो जाए, हम विचार हमारे शांत हो जाए। तो देखा गया है कि जैसे हमारा शरीर रिलैक्स होता है मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, और इस शांत अवस्था को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। क्राइसिस के वक्त शांत रहना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमको एक्ट करना होता है। लेकिन अगर हमने पहले से ही अभ्यास किया हुआ है तो क्राइसिस के वक्त भी हम शांत रह सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जांपल है जो बीमारियों में भी शांत रहते हैं, बीमारियों में भी खुश रहते हैं, या इस आर्थिक परिस्थिति जो है इसमें भी शांत रह के वो अपना बिजनेस चला रहे या अपने घर को चला रहे। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल हमारे पास है। समय के अभाव से मैं इन सबको नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेडिटेशन का 5 मिनट अभ्यास करेंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर बिल्कुल हल्का शांत और रिलैक्स। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशी रिलैक्स, चेहरा, सिर, आईब्रोज शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में महसूस करें, मैं एक दिव्य प्रकाश शरीर से भिन्न शांत स्वरूप शांत रिलैक्स। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी परमात्मा से शक्तियों का प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है और मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, और मैं शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। मैं शक्ति शक्ति स्वरूप चैतन्य शक्ति। आज मैंने महसूस किया ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसका समाधान ताला है मतलब चाबी है, समस्या है मतलब समाधान। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो मैं अपने आप को शांत रह सकता, मेरे विचार और भावनाएं मेरे नियंत्रण में। कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक नहीं है, मुझे धीरज रखना, हिम्मत रखना, परमात्मा की शक्ति सदैव मेरे साथ। ऐसे बहुत लोग इस समय है जो इस परिस्थिति से जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्थिर है। मैं भी स्थिर रह सकता हूं, किसी भी परिस्थिति को मैं हैंडल कर सकता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांत लगता है। ओ शांत शांति शांति। ये एक एग्जाम्पल आपको दिया गया कि इस तरह से रिलैक्स स्टेज में अगर आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट देते हैं, मेडिटेटिव थॉट देते हैं, तो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है जो ऑटो पायलट मोड में जाती है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलते हैं, उनको हम कंट्रोल कर करके धीरे धीरे खत्म करके फिर वहां पर सकारात्मक थॉट्स निर्माण कर सकते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता, इसके लिए अभ्यास करना होता है। हजारों भाई बहने, लाखों भाई बहने पूरे विश्व के 140 देशों में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और इस परिस्थिति में केवल अपने को नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी सहारा बने हुए हैं। जैसे मेडिकल विंग इस समय भारत और देश विदेश के जहां पर भी ये सेशन जा रहे सबके लिए सहारा बने हुए हैं। तो आइए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, नजदीकी ब्रह्मा कुमारी शाखा से संपर्क करें। अगर आप जा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं जा सकते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से तो ऑनलाइन आप ये कोर्सेस सीख सकते हैं। और प्लीज अगर आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब है, अपसेट है, तो ऐसा कोई डिसीजन मत लो जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े आपको और आपके परिवार को। मदद अवेलेबल है, प्रोफेशनल लोगों से बात करो, अगर नहीं तो हमसे बात करो, हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं। मैं इस समय परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि विश्व के ऊपर इस समय जो समस्या है कोविड-19 की वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। और मुझे आशा दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि वैक्सीन लास्ट स्टेजेस में है और वैक्सीन आते ही हम सब प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। हमको तब तक धीरज रखना है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। और हर समस्या हमारी शक्तियों को बढ़ाती है, हमको शक्तिशाली बनाती है। तो परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, ये पूरा विश्व जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्त हो जाए और इस धरती पर जो विजन है ब्रह्मा कुमारी इसका कि सतयुग आ जाए, सभी लोग सुखी हो जाए, विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, ये ब्रह्मा कुमारी का थॉट है। और इसी थॉट के साथ मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति। कैंसर के नाम सुनते ही स्ट्रेस हो जाए। कैंसर के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे सर्जिकल थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जीन थेरेपी है। और आज हम ये जानते हैं कि मेडिटेशन थेरेपी भी कैंसर के लिए काम आएगी क्या? वैसे तो कैंसर के लिए बहुत सारे कारण है, जनरल कॉजेस है, इम्यूनिटी रिलेटेड कॉजेस है, जीन रिलेटेड कॉजेस है, एनवायरमेंट रिलेटेड कॉजेस है, पर कोई भी साइकोलॉजिकल कॉजेस पे ध्यान नहीं देते। बहुत लोगों को ये पता नहीं कि साइकोलॉजिकल कॉजेस से भी कैंसर हो सकता है। बहुत लोग हैं जो अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, ये भी कारण हो सकता है। आज हम जानते हैं कि क्या क्या और कारण है, जैसे रिप्रेस्ड एंगर है, हेट्रेड है, द्वेष की भावना, रिसेंटमेंट है, आइसोलेशन अकेलापन है, डिप्रेशन है, पुअर स्लीप है, नींद सही नहीं आता, जनरल लाइफ स्ट्रेस है, थोड़े लोग छोटी छोटी चीजों में इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म में एक्युमुलेट होकर अपने बॉडी के सेल्स को इफेक्ट करता है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, नेचुरल डिजास्टर्स है, टेररिस्ट अटैक्स है, सडन लॉस ऑफ लव्ड वंस है, डोमेस्टिक अब्यूज है, सडन फाइनेंशियल लॉस है, ट्रेजिक इवेंट इन चाइल्डहुड या कुछ इवेंट ऐसा हुआ है उसके लिए उसके मेमोरीज बहुत हॉन्ट करते हैं, कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, या नेगेटिविटी जो हमको अभी मीडिया से मिलती है उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकली हमको इफेक्ट होता है। जब ये आदमी चिंता में रहता है तभी उसको भूख कम लगती है, उसकी वजह से बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस भी कम हो जाता है। आजकल हमारे बॉडी के ऊपर केमिकल और टॉक्सिन्स का इफेक्ट बहुत है। इसका मेन कारण है इंडोर पॉल्यूशन। हम लोग आउटडोर पॉल्यूशन के बारे में बहुत जानते हैं पर इंडोर पॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। जो भी केमिकल्स हम हमारे बॉडी को अप्लाई करते हैं या हमारे घर में साफ सफाई वगैरह इसके लिए भी हम यूज करते हैं वो सारा इंडोर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये इंडोर पॉल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी को इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म। और एक मेन कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, जैसे मोबाइल फोन है, पीसी है, लैपटॉप है, वाईफाई है, टीवी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो अपना रेडिएशन एमिट करता है। 3G है, 4G है, 5G है, इन सब से हमारे बॉडी के सेल्स को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है। नॉर्मली एवरीडे हमारा बॉडी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस से जूझता रहता है, एक्सपोज रहता है, जैसे एयर से हम जो सांस लेते हैं एयर में, फूड जो हम खाते हैं उसमें, या पानी जो हम पीते हैं उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो पहले ही बॉडी वो सब्सटेंस को एजेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर बाय चांस वो सेल में जाके सेल को अबनॉर्मल सेल्स बना देती है तो डीएनए उसको बाहर निकाल देता है, उसके साथ फाइट करता है। अगर वो कैंसर सेल में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम हो जाते हैं तो हमारे किलर टी सेल्स हैं जो कैंसर सेल्स को मार देते हैं। पर जब हमें स्ट्रेस है तो हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो ये सारे स्टेप्स कमजोर हो जाते हैं और हमें डिजीज होने लगती है। हमारा एक्यूट इंफ्लेमेटरी से प्रोसेस बढ़ जाता है इसकी वजह से। और अभी हम जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से एक्चुअल में सेल में कैसे चेंजेस होते हैं। कोई भी इमोशनल स्ट्रेस है उसकी वजह से हमारा डीप स्लीप इफेक्ट होता है। स्लीप इफेक्ट होने के कारण मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, वो कैंसर सेल को इनहिबिट करने के लिए काम होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने का प्राइमरी हार्मोन है। और हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता है, आदमी एग्जॉस्टिव फील करता है, उसके एड्रिनल ग्लैंड थायराइड ग्लैंड फटीग हो जाते हैं और हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं सोमैटिक्स वो एग्रेसिव बैक्टीरिया ईस्ट और फंगल लाइक स्ट्रक्चर्स को चेंज हो गए और वो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर है। स्ट्रेस की वजह से हमारे सेल्स में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसकी वजह से कैंसर का पेशेंट वीकनेस महसूस करता है। स्ट्रेस खाली कैंसर प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हेल्प करता है। कैसे? हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, जैसे VEGF है या मेट्रोप्रोटीनेसिस है, वो बढ़ने की वजह से एंजियोजेनेसिस अबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रोथ बढ़ाता है और ट्यूमर का वॉल को ब्रेक डाउन करता है, इसकी वजह से वो रैपिडली प्रोग्रेस होता है। तो अभी हम ये जान गए कि स्ट्रेस की वजह से हमारे सेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं साइको न्यूरो, उसका डेफिनेशन है बिहेवियरल साइकोलॉजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल अप्रोचेस टू द मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज है। सिंपल भाषा में उसको माइंड बॉडी मेडिसिन कहते हैं। इसका मतलब हम हमारे माइंड प्रोसेस ऑफ माइंड को हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करके हील करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये साइंस दिखाता है। इसका मेन टूल है एक मेडिटेशन। अभी हम जानते हैं कि मेडिटेशन से क्या चेंजेस होते हैं। पहले तो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेडिटेशन बनाता है। हमारे हार्मोन लेवल जो भी ऊपर नीचे हुए हैं उसको नॉर्मल करता है। हमारा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। नेचुरल किलर सेल्स जो हमारे बॉडी में है उसको ज्यादा करता है। सेलुलर एंटीटॉक्सिन्स को बढ़ाता है तो वो फ्री रेडिकल्स जो सेल में रहते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। और जो मसल टेंशन हमारे बॉडी में होता है जिसकी वजह से हेडेक है या पेन है उसको कम करता है। अभी आप सोचो कि मेडिटेशन कैसे कैंसर पेशेंट को हेल्प करता है। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास जिसको कुछ गांठी हुई है या कोई सिम्टम्स है जिसको उसको कैंसर है या कैंसर डाउट है, तो डॉक्टर उनको लैब टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, सोनोग्राफी बोलते हैं, एफएनएसी बोलते हैं, बायोप्सी कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं। ये जो प्रोसेस है ये टाइम में वो फियर एंग्जाइटी कंफ्यूजन से भरा हुआ रहता है। अगर वो आदमी अगर मेडिटेशन करता रहा तो इतना डरा हुआ नहीं रहता। और बाय चांस कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, पक्का किया कैंसर है, तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कैंसर है, तो इमोशनल जो शॉक जब भी होती है वो टाइम में होता है, उससे बचने के लिए उसको कम करने के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। बहुत सारे पेशेंट एक बार सुन समझ में आ गया उनको कैंसर है तो वो समझते अभी कैंसर हो गया है, कुछ अभी आगे नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लोग डर के घर में बैठते हैं, रिलेटिव्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते, हॉस्पिटल नहीं आते हैं, टेस्टिंग नहीं कराते हैं, आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं प्रॉपरली, इसकी वजह से भी कैंसर बढ़ता है। अगर वो मेडिटेशन करता रहा तो वो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है वो अच्छी तरह से जानेगा, जो डॉक्टर के लाइफस्टाइल चेंजेस बोल रहे हैं उसको रिलीजियसली करेगा तो अपने रिकवरी के लिए वो हेल्प होगा। और जो भी स्ट्रेस है इनर स्ट्रेंथ उसको गेन होता है, उसको डीप रिलैक्सेशन होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है, कामनेस होता है। चैलेंजेस जो आगे ट्रीटमेंट में होने वाले हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट जो भी होने वाले हैं उसको हाइट करने के लिए और उसको होप दिलाने के लिए मेडिटेशन काम आता है। उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम करने की वजह से जो कैंसर आगे बढ़ने वाला है उसको रोक सकते हैं और वो हील भी हो सकता है। मेडिटेशन माइंड इमोशन और बॉडी तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करता है। एक्यूट स्ट्रेस मैकेनिज्म को कम करता है। जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है जैसे मेलाटोनिन है जो नींद अच्छी दिलाने के लिए काम करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बूस्टर है, वो 98% को 300% मतलब 300 गुना बढ़ जाता है मेडिटेशन से। DHEA जो रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज को बढ़ाता है वो ऑलमोस्ट 90% बढ़ जाता है। डोपामिन है, सेरोटोनिन है जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, आदमी को अच्छा लगने लगता है। गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है अनकंट्रोल्ड अनवांटेड थॉट्स को कंट्रोल करता है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो ऑलमोस्ट 47% कम हो जाता है। तो अभी हम जानते हैं कि मेडिटेशन से साइंस क्या स्टडी किया अभी तक मेडिटेशन के ऊपर और रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या बोलता है, जर्नल्स में जो पब्लिश हुए आर्टिकल्स है उनके कंक्लूजन के बारे में हम जानते हैं। मेडिटेशन हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को चेंज करता है, स्पेशली इमोशनल अवेयरनेस सिस्टम है उसको बढ़ाता है। मेडिटेशन से कॉर्टिकल थिकनेस इंक्रीज होता है, ग्रे मैटर में चेंजेस आते हैं, इमोशनल रेगुलेशन के लिए हेल्प होता है। मेडिटेशन बूस्ट बॉडीज नेचुरल कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज बाय हाइटनिंग एक्टिविटीज ऑफ NK सेल्स, T सेल्स एंड अदर इम्यून मैकेनिजम्स। इट प्रमोट्स DNA रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ टेलोमेराइज। टेलोमेराइज हमारे क्रोमोसोम के एंड कैप्स हैं, जो जितना लेंथ ज्यादा होता है उतना आपको डिसीज से प्रोटेक्शन मिलता है, उसको मेडिटेशन बढ़ाता है। एक स्टडी में यह बोला गया है कि पॉजिटिव थॉट्स होने की वजह से हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी चेंज होता है हीलिंग के टूवर्ड्स। और एक स्टडी में यह बोला है कि जो भी रिप्रेस्ड इमोशंस दबा के रखे हुए उसकी वजह से अनबैलेंस्ड कॉर्टिसोल फ्लक्चुएशन होते हैं और एंड दैट कैन प्रेडिक्ट अर्ली डेथ इन कैंसर. और अनदर स्टडी सेज दैट सप्रेस्ड एंगर कैन बी अ प्रिकर्सर एंड डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एंड फैक्टर इन इट्स प्रोग्रेशन आफ्टर द डायग्नोसिस. ये नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करता है, बैड मूड्स को कम करता है, कंपल्सिव वरिंग को भी मेडिटेशन कम करता है. विजुअलाइजेशन ऑफ हीलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन करने से एक्चुअल हीलिंग इंप्रूव हो जाता है. एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. मेडिटेशन रिड्यूसेस द स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स. इट इंक्रीज इम्यूनिटी, इंक्रीज मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग. It reduces anxiety, depression, emotional and psychological adverse effects associated with medical or endocrine treatments. It reduces fear of recurrence. जो treatment ले चुके हैं cancer का पर अभी उनको doubt है कि और एक बार नहीं आए, वो doubt कम करता है. Fatigue, जो generalized सुस्ती रहती है cancer patient की, वो कम करता है. एक study neuroblastoma cases children में किया गया था जिसमें वो बोलते हैं कि अक्यूट पेन बहुत कम होता है मेडिटेशन करने से और ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ऑप्टिमिज्म टू कोप विद इलनेस बढ़ जाता है. तो इतना सारा साइंस हमको बोल रहा है कि मेडिटेशन से इतना इफेक्ट हमको अच्छा इफेक्ट बॉडी पे आता है, तो क्यों ना हम हमारे पेशेंट्स को मेडिटेशन कराएं. इसकी वजह से उनका साइकोलॉजिकली जो भी डिस्टर्ब है वो तो सही हो जाएगा, उनका जो डिसीज प्रोग्रेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा, काफी लोग हील भी हो जाएंगे. तो मुझे लगता है सब डॉक्टर लोग या जो भी है पेशेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं मेडिटेशन को कैंसर के मरीजों में अपनाना जरूरी है. अभी हम जानते हैं थोड़े मिरेकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज जिनको कैंसर हुआ था और कैसे वो लोग बाहर आए. तो पहला है वियना स्टीबल. वो नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर थी, डायट प्रैक्टिशनर थी. उनको बोन का कैंसर हुआ राइट लेग में, उनको एम्पुटेशन एडवाइस किया गया. उन्होंने नेचुरोपैथी ट्राई किया, क्लिंजिंग ट्राई किया, डायट ट्राई किया, विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशन किया, पर कुछ हुआ नहीं. फिर एक बार उन्होंने सोचा कि मेडिटेशन से मुझे इसको हील करना है और डीप मेडिटेशन करने लगे डेली प्रैक्टिस. फिर एक दिन उनको इंट्यूशन आया कि आज मुझे हील होना है और आज हील होंगी. फिर उनको सडनली ये ख्याल आया कि उन्होंने बॉडी को कमांड किया कि आज मुझे कंप्लीटली हील होना है, नॉर्मल होना है. तो टू हर सरप्राइज ऑल्सो उनका लेग 3 इंच श्रंकन हुआ था, वो ग्रो होने लगा, धीरे धीरे वो नेचुरल स्टेट पे आ गया और शिकवा क्योर. कैन यू बिलीव दिस? आई मीन ये टाइप ऑफ मिरेकल होते हैं मेडिटेशन से और ये लाइव एग्जाम्पल है. और एक एग्जाम्पल है लुइस हे, आप जानते होंगे, एक बहुत नामी ऑथर है जो माइंड के ऊपर रिसर्च करते हैं. इनका हम इमोशनल जर्नी जानते हैं इनके लाइफ का. ये 1.5 साल की थी तभी इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया. ये 5 साल की थी तभी इनका रेप हो गया. मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज वॉज रूटीन इन हर लाइफ. शी बिकेम अनवॉन्टेड मदर एट द एज ऑफ 16. उनका शादी हुआ तो डाइवोर्स हो गया. वो खुद मेडिटेशन की टीचर थी पर भी उनको वजन में कैंसर हुआ. अभी इससे उन्होंने वो बाहर कैसे आए? तो डेली मेडिटेशन उनको हील करने के लिए उन्होंने यूज किया, डेली अफर्मेशन उन्होंने यूज किया, अपने इमोशनल इश्यूज को रिजोल्व किया, अपने पेरेंट्स को जो वो ब्लेम करती थी वो स्टॉप किया उन्होंने, वेजिटेरियन डिटॉक्सिफाइड डाइट लेने लगे, इसकी वजह से उनको क्योर हो गया. मॉरल उनका है, वो क्या बोलते हैं कि एनी डिसीज कैन बी हील्ड इफ वी आर विलिंग टू चेंज द वे वी थिंक, बिलीव एंड एक्ट. ध्यान से और एक बार सुनना, डिसीज कैन बी हील्ड इफ वी आर विलिंग टू चेंज द वे वी थिंक, बिलीव एंड एक्ट. अभी नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर उसको गोली से हील करे, पर द मेजर कैच क्या है कि अपने इमोशनल या अपने घर में जो टेंशन है उसको कुछ ध्यान नहीं देता है, या अपने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करना है उसके ऊपर तो ध्यान नहीं देता है. जो काम चल रहा है उसके लाइफ में, उसके प्रोफेशनल फ्रंट पे वो करता ही रहता है, वो इमोशनल या वो स्ट्रेस में रहता ही है. इसकी वजह से उसको बार 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 डिसीजेस होते हैं और आए तो जल्दी कंट्रोल नहीं होते. तो हम मुझे लगता है कि पेशेंट भी अपने हीलिंग में अपने बॉडी के साथ साथ दे, अपने बॉडी में क्या चल रहा है वो देखे, अपने बॉडी में सेंसेशन जो आ रहे हैं उसके बारे में सोचे। वो कब होएगा? जब भी उसका माइंड शांत होएगा। शांत कब होएगा? जब भी वो मेडिटेशन करेगा, जब भी अपने साथ वो डेली बैठेगा। पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक हम लोग खाली वही काम, सेम आज का दिन वही काम, अगले दिन वही काम, तीसरा दिन वही काम, ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती रहती है। सुबह से शाम तक हम दूसरों से बात करने में बिजी रहते हैं पर हम खुद से बात नहीं करते। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली सब लोग अपना सेल्फ ऑडिट करो, अपना उतार चढ़ाव, स्ट्रेस या मेंटल टेंशन पूरे दिन में कैसा था, किसी के साथ मेरा व्यवहार बर्ताव कैसा था उसके बारे में सोचो, और रात में सोने से पहले जो भी था वो माइंड में से निकाल के उसको भगवान को अर्पित करके सो जाओ। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल है अनिता मोरजानी, ये ऑथर है डाइंग टू बी मी बुक की। इनको 2002 में कैंसर डायग्नोस हुआ। शी पास्ड अवे इन 2006। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। शी हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, felt like whole world is just a culmination of everyone's thoughts and beliefs. Nothing was actually real, but we make it real with our beliefs. So she said, herself felt that cancer is also not real. She came back to her body and declared that she is cancer free. Or doctors confirmed it. She had been cancer free. Stage 4 cancer se guzar gayi thi 5 minute pehle. Wapas aayi to cancer nahi. Can you believe this? Such a sort of miracle. बाद में उनका इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने ये दिया कि unless I love myself, nothing else in my life can function at its best. So ये सारे एग्जाम्पल से हम लोग सीखे हमारे लाइफ को चेंजेस कैसे करें। नेक्स्ट है मार्टिन ब्रॉफमन, ये टर्मिनल कैंसर स्पाइनल कॉर्ड का इनको हुआ था। इन्होंने कैसा किया कि अपने आप को, ये अपना कॉन्शियसनेस को रीप्रोग्राम किया मेडिटेशन करते वक्त, माइंड को सजेशंस दिया। अपना जब भी खाना खाते हैं तो उन्होंने सोचा कि ये खाना जो भी अंदर जा रहा है वो मेरे कैंसर को हिट कर रहा है। अपने आप से पॉजिटिवली बात करने लगे, माइंड को शार्पली फोकस किया हीलिंग के टूवर्ड्स मेडिटेशन करते वक्त। अभी ये कॉन्शियसनेस को रीप्रोग्राम कैसे करें? नॉर्मली हम लोग एक लेवल तक, हमारा बीटा लेवल में हम रहते हैं डेली। हमारा लेवल अगर बढ़ाना है, हमारे पास वो सक्षमता नहीं है, तो हमें हायर सोर्स से लेना पड़ता है। तो हमें अभी जैसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से अभी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है। जब भी चार्ज रहता है तभी वो व्हीकल चलता है, जब भी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हमको चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही हमारा इंडोर पोल्यूशन, इंटरनल पोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ता है, और जब भी हम थक जाते हैं तो हमको हायर सोर्स से, हमारे हायर सेल्फ से एनर्जी लेनी पड़ती है। यही राजयोग में सिखाया जाता है। नेक्स्ट केस है ब्रैंडन बेस, इनको फुटबॉल साइज पेल्विक ट्यूमर हुआ एट द एज ऑफ 39। शी वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर हरसेल्फ, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल थेरेपी एक्सपर्ट थी, तो भी उनको पेल्विक ट्यूमर एक फुटबॉल के साइज इतना हो गया। उनको चाइल्डहुड में बहुत सारा अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। वो मेडिटेशन में बाद में अपने पेरेंट्स को डेली फॉरगिवनेस करती रही। धीरे धीरे उनका ट्यूमर सॉफ्टन हुआ और 6 वीक में उनका ट्यूमर गायब हो गया। ये सारे इमोशंस की वजह से जो एग्जांपल्स हमने अभी सोचा सुना उसकी वजह से कैंसर हो रहा है और कैंसर को हील भी करते हैं। तो अगर कैंसर हील होता है तो और कोई भी डिसीज हील हो सकता है। कंक्लूजन में इमोशनल एंड मेंटल स्टेट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल बोथ इन ससेप्टेबिलिटी टू and recovery from all the diseases, including cancer. If the total integrated system of the body, mind and emotions, which constitute the whole person, is not working in direction of health, then purely physical interventions मे नॉट सक्सीड। तो क्वांटम हीलिंग क्या बोलता है, हेल्थ इज एन ऑप्टिमिस्टिक स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एनर्जीज एक्टिंग एट अ डिफरेंट प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इलनेस इज डिसइक्विलिब्रियम एट एनी प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस रिजल्टिंग इन डिसहार्मनी विच कैन बी करेक्टेड बाय मूविंग टू अ हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हायर लेवल ऑफ हार्मनी। अभी ये हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस और हायर लेवल ऑफ हार्मनी को हम कैसे पहुंचेंगे, पहले तो हम लोग अपना फिजिकल हाइजीन के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, पर हमारे मेंटल हाइजीन के बारे में बिल्कुल हम ध्यान देते। अगर मेंटल हाइजीन को हमको इम्प्रूव करना है तो हमको मेडिटेशन करना जरूरी है, स्पेशली हमको हमारे हायर सेल्फ से, हायर कॉन्शियसनेस से, परमात्मा से एनर्जी हमको लेनी पड़ती है, क्योंकि हम अभी सक्षम नहीं है, हमारे में वो ताकत नहीं है, इसलिए हम ये तकलीफें झेल रहे हैं मोस्ट टाइम। जब भी हमारे साथ हायर सोर्स का, हायर कॉन्शियसनेस का एफर्ट भी हमको हील करने के लिए मिल जाता है तो इजीली हम लोग हमारे प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। अभी मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूं। 2005 से मैं पेशेंट्स को मेडिटेशन सिखा रहा हूं। हमारा हॉस्पिटल है ऑलमोस्ट 50-year-old हॉस्पिटल, जहां हम एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाए हैं और उधर एक 80 लोग बैठ सकते हैं। डेली उधर मेडिटेशन हम कराते हैं, रोग अनुसार योग, जो पेशेंट्स को मेडिटेशन कॉमेंट्री हम उनके उनके डिसीज के हिसाब से देते हैं। स्टार्ट कैसे हुआ, कैंसर के पेशेंट्स मैं नोटिस करता था कि स्टेज 4 कैंसर में बहुत सारा पेन होता है, तो हम लोग क्या देते हैं, पेंटिडिन दिया, मॉर्फिन दिया, उनको सुला देते, पर उनका लाइफ हमने एक्सटेंड कर दिया, पर उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हुआ। तो जितना लाइफ वो एक्स्ट्रा रह रहे हैं उतना ज्यादा टाइम वो हॉस्पिटल में स्पेंड कर रहे हैं, वो वरीड है, थोड़ा भी कुछ भी सिम्टम आता है तो बहुत घबरा जाते हैं, उनके रिलेटिव भी बहुत घबरा रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि रिलेटिव को मैं उनको वाइब्रेशन भेजने का, हीलिंग का वाइब्रेशन भेजने का मैंने सिखाया। उनको क्या बोला कि आप उनको वाकई प्यार करते हो तो उनके आसपास आप बैठो, डेली आधा घंटा उनके लिए मेडिटेशन करो। तो जब हम ऐसा स्टार्ट कर रहे तो मिरेकुलसली हमको लगता था कि 2 महीना में अगर चला जाएगा ऐसा पेशेंट लगे, वो एक एक साल जीने लगा। जब भी उनके रिलेटिव उनके आसपास बैठ के मेडिटेशन करने लगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे एक आध हफ्ते में खुद करने लगा और उसका पेन और उसका डिप्रेशन एंग्जाइटी कम होने लगा। मैं नॉर्मली उनको क्या बोलता हूँ, देखो भैया एक्सपायरी डेट तो सबका है, सबके पास है, पर कौन सा डेटा हमको पता है। आप एक दिन एक्सपायर हो गए बोल के आप डेली आप सोचते बैठो, टेंशन में रहो, क्या मतलब है। आज आप जिंदा हो तो आज का दिन अच्छा रहो ना, हंसी खुशी से रहो ना, और बार बार आपका टेंशन कम है तो आपको डिसीजेस की प्रोग्रेस नहीं होगा, आपको अच्छे भी लगने लगे। तो मैंने मेरे स्टाफ को सबको ये सिखाया और स्टाफ लोग सब मिलके हम लोग मेडिटेशन करते हैं पेशेंट्स के लिए। इससे बहुत अच्छा लगता है, स्टाफ को भी लगता है, होमिल फीलिंग लगता है, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होते हैं, सेवा मनोभाव बढ़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपना सोसाइटी में अपना हॉस्पिटल नाम भी बढ़े और दूसरा अपने को अंदर से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब भी पेशेंट बोलता है कि आपकी वजह से ठीक हुआ। अभी लास्ट वीक की एक मैं बात बोलता हूँ, एक सीए ब्लैडर का 4 स्टेज कैंसर का पेशेंट, पेन बहुत था और उसकी वजह से उसको मॉर्फिन वगैरह पैचेस वगैरह हम दे रहे थे, उसको 60 उसको मल्टीपल मेट्स था लंग्स में लिवर्स में, उसका SpO2 लेवल 60% था, ऑक्सीजन पे चल रहा था। तो मैंने उनके रिलेटिव को बोला मुझे नहीं लगता है कल तक ये रहेंगे, तो बोले देखते हैं फिर जब तक है तब तक रहने दो हॉस्पिटल में। तो उस दिन शाम में लॉकडाउन वैसे भी था, सब स्टाफ को बुला के मैंने बोला इनके लिए मेडिटेशन करेंगे और बैठ के मेडिटेशन किया। तो यू विल नॉट बिलीव कि मॉर्निंग सुबह उठ के वो आदमी बोलता है कि मुझे भूख लगी है और 7 इडली खाया उस दिन उसने। आई मीन इट्स लाइक अ मिरेकल, आपके सामने वो दिखे तो आपको मिरेकल लगेगा कि आदमी घास्टिंग है, 60% ऑक्सीजन पे है, फिर भी उठ के वो मांग रहा है कैसे। आई मीन क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना चेंज होता है। तो मैं सब लोगों को, डॉक्टर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट अस जॉइन हैंड्स इन एलिवेटिंग द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इट्स सफरिंग। तो हम लोग डेली हमारे हॉस्पिटल में एक मेडिटेशन सेंटर करें जहाँ हम भी मेडिटेशन करें और हमारा स्टाफ और हमारे पेशेंट्स करें, इससे बहुत सारी अच्छी सेवा हम कर सकते हैं, उनको साइकोलॉजिकली हम स्टेबल कर सकते हैं, उनको हीलिंग के लिए हम हेल्प कर सकते हैं. लेट अस बिल्ड अ ग्रेट ह्यूमैनिटी एंड लेट अस ऑल गेट टुगेदर एंड वर्क फॉर अ बेटर ह्यूमैनिटी वर्ल्ड. थैंक यू. ओम शांति.
ओम शांति. कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है. घर में किसी से कोई बात हो जाए, कहासुनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो मन करता है कि थोड़ी देर अकेले में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी और बात खत्म हो जाएगी. लेकिन हर झगड़े का सोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता. कहावत है, कोई झगड़ा हो, कोई बात हो, या तो माफी मांग लो नहीं तो दे दो. क्योंकि तो माफी मांग नहीं सकते तो दे तो सकते ही हैं. मांगने से देना आसान होता है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है. कभी कभी अकेलापन लंबे समय तक चलता है. जैसे किसी की कोई मजबूरी हो, कोई बच्चे को स्कूल से हॉस्टल से में रहना पड़े लंबे समय तक घर छोड़कर, या किसी व्यक्ति को अपने कार्यवश या कोई और कारणवश घर से दूर रहना पड़े लंबे समय तक, या कोई घर में किसी के पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, कोई इशू हो जाए, या अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के समय हम घर में ही बंद है लंबे समय तक, तो बहुत लोग अकेलापन का शिकार है. अब अकेलापन अगर लंबे समय तक चलता रहे तो कुछ ना कुछ हमारे मन पर, बुद्धि पर और हमारे शरीर पर भी कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर पैदा करता है. अगर हम मानसिक रोगों की बात करें तो अकेलापन किसी ना किसी रूप में एंजाइटी, डिप्रेशन और घबराहट, नींद की गड़बड़ी रहना, कोई नशीले पदार्थों का सेवन करना, इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं. और अगर शरीर के रोगों की बात करें तो शरीर पर कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव जरूर होता है. सभी मानसिक रोग अकेले नहीं आते, किसी ना किसी रूप में शरीर की बीमारियां जरूर लाते हैं अपने साथ. जैसे कि ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना, जीआईटी प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो जाना, और अगर वर्स केसेस हो तो वर्स से वर्स हार्ट अटैक भी हो जाता है, ब्रेन अटैक जिसको स्ट्रोक कहते हैं वो हो जाता है. कई बार शुगर में फ्लक्चुएशन होने लगती है डायबिटीज के मरीजों में. तो मानसिक रोग और शारीरिक रोग दोनों ही अकेलेपन से अगर लंबे समय तक चलता रहे तो जरूर किसी न किसी रूप में हमको असर करते हैं. अब अकेलापन का अगर कारण जानने की हम कोशिश करें तो अकेलापन सिचुएशन देखिए कोई भी हो सकती है, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो लंबे समय चलने वाली हो. और अगर हम सिचुएशन को एग्जामिन करना देखें कि सिचुएशन तो बदलती रहेगी, आएगी लंबे समय तक चलेगी, चाहे कुछ समय तक चलेगी, लेकिन उसके लिए हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, हमारा क्या रिएक्शन होता है, ये हम पर निर्भर करता है. क्योंकि सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सिचुएशन तो कभी कुछ रही, कभी कुछ रही. अब हमारा क्या रिस्पॉन्स है वो अलग अलग रहता है. फर्ज कीजिए घर में कोई बात होगी, किसी व्यक्ति ने, किसी बड़े ने कुछ बात कह दी. अब वो बात तो एक थी, सुनने वाले पांच हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन पांचों का अलग अलग रिएक्शन होगा. अब कोई कहेगा चलो कोई बात नहीं, बात होगी जाने दो. किसी का रिएक्शन होगा कि अरे ऐसे कैसे कह दिया, इनकी हिम्मत कैसी हुई. कोई कहेगा नहीं ये बात ठीक नहीं है. वो कोई कहेगा कि नहीं हमें देखनी चाहिए, हमारी क्या कमी है. तो सिचुएशन तो आएगी, बदलती रहेगी, लेकिन हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, ये हम पर निर्भर करता है. तो अकेलेपन का ये कारण कुछ भी हो, हमारा रिस्पॉन्स हमेशा अलग अलग होता है. इसी तरह तो लॉकडाउन में चल रहा है, कुछ लोगों ने अपनी हॉबीज बना ली है, कुछ ना कुछ, कोई कुछ घर में कुछ काम वगैरह सीख रहा है, कोई रीडिंग की हैबिट डाल रहा है, और कोई सिर्फ अपशब्द बोले जा रहा है सरकार को या समाज को कि ये क्या हो गया, दूसरे देशों को. तो कहने का मतलब है कि हमारा रिस्पॉन्स जो होता है अकेलेपन को, सबका अलग अलग होता है. अकेलेपन को बीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अक्सर अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और उस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, उस पर एंटरटेनमेंट करना, टाइम पास करना शुरू हो जाते हैं। उससे मन बढ़ जाता है तो टेलीविजन देखने लगते हैं, या किसी दोस्त रिश्तेदार को फोन मिला लिया, मन बहला लिया, उनके साथ कहीं बाहर घूमने निकल गए। किसी किसी को भूख ज्यादा लगती है, अकेलापन खाने से सेटिस्फाई होता है तो कुछ ना कुछ खाने की आदत लग जाती है, उससे मोटापा होने का खतरा रहता है। लेकिन ये सब उपाय अकेलेपन को दूर करने के लिए टेम्परेरी होते हैं। किसी का अकेलापन ज्यादा बढ़ जाए इन सब उपायों से ना हो तो फिर सेकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, सेकेट्रिस्ट दवाई भी लिखते हैं और काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं कि अपने मन को बिजी रखो, खाली समय ना बैठो, कुछ अखबार पढ़ने की, मैगजीन पढ़ने की आदत डालो, टीवी देखो, कहीं घूमने जाओ। तो अगर हम ये देखें कि अकेलेपन के कारण क्या हैं, अकेलेपन का होना तभी होता है जब हम किसी न किसी व्यक्ति विशेष पर या वस्तु विशेष पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब हम डिपेंडेंट हो गए और वो चीज हमसे हट जाती है, दूर चली जाती है, उसके अभाव में हमें अकेलापन महसूस होता है। और जब अकेलापन महसूस होता है तो हमें यही सब टेम्परेरी हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, टाइम पास हो जाए और मन बहल जाएगा, मन को शांति मिल जाएगी, खुशी होगी। लेकिन ये सारे के सारे टेम्परेरी उपाय हैं, और साइकेट्रिस्ट हो गए या साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये भी सब तो वही कर रहे हैं ना कि जो हम जिस चीज पर हम डिपेंडेंट थे उन्हीं चीजों पर या वस्तुओं पर या व्यक्तियों पर ही डिपेंडेंट रहने की सलाह देते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, वो साइंटिफिकली अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं कि क्या हमको ये परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है इन सब चीजों से, क्या परमानेंट सुख या शांति मिल सकती है, क्या परमानेंट डिपेंडेंसी हमको इन चीजों पे मिल जाएगी जिससे कि हमेशा के लिए हमारा अकेलापन चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कहे कि मेरे जीवन में अकेलापन इस वजह से है क्योंकि फलाना फलाना कारण है, कि लॉकडाउन है या कोई फैमिली प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मैं अकेला हूं और मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अकेला रहना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से मुझे जो डिप्रेशन हो गया है या सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं, कभी कभी तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सुसाइड भी कर लेते हैं, तो क्या ये कहना ठीक है उस व्यक्ति का कि डिप्रेशन आना तो नॉर्मल बात है, तो आएगा ही आएगा, ठीक है? या अगर मैं ओबेसिटी हो गई मेरे को, मेरी शुगर फ्लक्चुएशन हो रही है या ब्लड प्रेशर मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ये तो नॉर्मल है। क्योंकि अभी हमने देखा कि अकेलेपन के कारण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सब लोगों का अलग अलग होता है। तो अगर रिस्पॉन्स अलग है तो हम ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास स्टिमुलस आया, जो बाहर की सिचुएशन आई, उसे ही दोषी मानते हैं या अपने आप को दोषी मानते हैं। आमतौर पर हमारा एक कहना होता है कि सिचुएशन दोषी है और हम तो ठीक है, उसी की वजह से ही हमारे पर ऐसा प्रभाव हो रहा है और हमारा ऐसा रिएक्शन हो रहा है। बट अगर हम इसकी गहराई में जाएं, अगर इसको महीनता से समझें, तो हमारा रिएक्शन तो अलग अलग है, सिचुएशन तो सभी के लिए कॉमन है। अगर सिचुएशन दोषी होती तो सभी पर एक जैसा असर आता, लेकिन सिचुएशन तो सब लोगों के लिए, चाहे लॉकडाउन हुआ, चाहे जो भी कारण रहा अकेलापन का, वो तो सबके लिए सेम रही, लेकिन हम सबका रिएक्शन उसके प्रति अलग अलग रहा। तो ये सिचुएशन को नहीं, ये हमारा दोष हुआ कि हम इस तरह से कर रहे हैं। और अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अकेलापन तो चलो ठीक है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो सेम रहेगा सबके लिए, हमारा रिएक्शन हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर डिपेंड करता है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, हमारी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे रिएक्शन हमारे हाथों में है, हम अपने बाहर की सिचुएशन को दोषी नहीं बैठा सकते कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे को शुरू किस वजह से हुआ। जैसे अकेलापन का कारण था कोई ना कोई डिपेंडेंसी, ठीक है, कोई ना कोई निर्भरता, चाहे व्यक्ति विशेष पर थी और चाहे कोई वस्तु विशेष पर निर्भरता थी, जिसकी वजह से हम अकेलेपन का जो सफर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मन पर है, मानसिक रोग हमारे बन रहे हैं या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सारा का सारा उस सिचुएशन की वजह से हो रहा है। तो सॉल्यूशन भी इसमें वही छुपा हुआ है कि हमें कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि जो हमको निर्भरता भी पूरी दे, जिस पर हम पूरा निर्भर हो सकें, और उसके साथ साथ हमको पूरी मन की शांति और खुशी भी दे। तो ऐसा क्या हो सकता है अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास हमेशा हो, हम उससे अपने मन की बात कर सकें, हम उससे जो दिल की बात है कुछ भी कह सकें, हमारा वो हाथ पकड़ सके, हम उसके साथ हमेशा रह सकें और हमेशा दिखाई दे। आइडियल सॉल्यूशन तो ये हो गया। तो अगर हम सोचें कि भाई या और कभी हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए मन करे तो वो हमारा एंटरटेनमेंट भी करे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ ना सिर्फ मेरे अनुभव से है बल्कि मेरे जैसे लाखों भाई बहनों से है के अनुभव से है, जो कि इसमें काफी समय से इस आध्यात्मिकता से कहें, इस स्पिरिचुअलिटी से कहें, इस सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स फाइंडिंग कहें, उससे जुड़े हुए। तो तीन चार चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज तो है कि रात को सोने से पहले 5 मिनट और सुबह उठने के तुरंत बाद 5 मिनट और हर भोजन ग्रहण करने से पहले 5 मिनट हम अब एकदम शांति से बैठ जाएं, ठीक है, बिल्कुल शांति से, और अपने मन में कुछ विचार हमें देने हैं। ये हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विचार क्या देने हैं? विचार हमें देने हैं कि मेरी बुद्धि सारे विचारों से एकदम खाली हो गई है, मेरा माइंड एकदम एक ब्लैंक स्पेस है, उसमें कोई भी थॉट नहीं है। हमारी बुद्धि में निरंतर बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिन भर और एकदम ब्लैंक हो गई है। ब्लैंक होने के बाद उसमें बिल्कुल शून्य है, एकदम जीरो, जैसे फुल स्टॉप लगा देते हैं पेपर पर, बिल्कुल वैसे बुद्धि में फुल स्टॉप लगा दीजिए कि एकदम कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम साइलेंस है। और अब मेरी बुद्धि में ऊपर से तेजी से शांति की शक्ति की किरणें आ रही हैं और जो मुझे शांति दे रही है। पहला थॉट तो ये हो गया कि दिन में 5 बार, 3 बार भोजन से पहले, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। दूसरी चीज जो हम लोग करते हैं और हमने बहुत ही इफेक्टिव पाई है वो है स्क्रीन टाइम को कम करना। सुबह उठने के 1 घंटे के बाद तक और रात को सोने के 1 घंटे पहले तक नो स्क्रीन टाइम, चाहे फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, टेलीविजन है, कोई भी स्क्रीन, डिजिटल मीडिया नहीं देखना है। टोटली स्क्रीन बंद करके आंखों के सामने से हटा दीजिए और ये ट्राई करके देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है। अब आप कहेंगे स्क्रीन का अकेलेपन से क्या रिश्ता? स्क्रीन भी तो एक डिपेंडेंसी है ना, क्योंकि हम मोबाइल फोन पे ही आजकल ज्यादातर डिपेंडेंट हो गए। हम इंसानों से, व्यक्तियों पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितने मोबाइल फोन पे डिपेंडेंट है। तो मोबाइल फोन को अगर हम धीरे धीरे परहेज की तरह से, एक एक्सपेरिमेंट की तरह से स्टार्ट करें और इसको आगे कैरी ऑन करके चलें, तो देखेंगे हमारी डिपेंडेंसी उस पर कम होती जा रही है। और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि उसको सिर्फ जरूरत के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए ही यूज करना है और किसी चीज के लिए नहीं। और ये आदत धीरे धीरे बनेगी। आप कहेंगे कहना आसान है करना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई भी चीज को हम 21 दिन तक परसू करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, और जो चीज आदत बन जाती है वो हमारी पर्सनैलिटी में फिट हो जाती है, और जो हमारी पर्सनैलिटी में फिट हो जाती है वो हमारा जीवन बना देती है। तो पहली चीज तो हर भोजन से पहले और सोने से पहले, उठने के बाद 5 मिनट साइलेंस में बैठना है, अपने विचारों को फुल स्टॉप लगाना है। दूसरी चीज नो स्क्रीन टाइम, in the morning and in the evening and only use the phone for productivity, for essential purposes only. तीसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो है अपने विचार को देखना, विचारों को अवेयरनेस में लाना. अब ये अवेयरनेस क्या चीज है और विचारों को अवेयरनेस में कैसे लाया जाए, जैसे ही सबसे पहले कोई नेगेटिव थॉट आता है, अकेलेपन का कि मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है देखने को, बात करने के लिए, तो उस थॉट को तुरंत ही इस अवेयरनेस में लाना है कि हाँ ये मेरे को नेगेटिव थॉट्स, ये यूजलेस थॉट्स, एक होते हैं नेगेटिव एक यूजलेस थॉट्स जिनका कोई यूज नहीं है, भले ही वो नेगेटिव ना हो बट वो चलते रहते हैं हमारी बुद्धि में निरंतर, हमारे बैक ऑफ द माइंड में. तो ऐसे थॉट जैसे ही आते हैं तुरंत ये मेरे को साक्षी होके, एक विटनेस होके मेरे को ये सोचना है कि ये मेरे थॉट्स आने शुरू हो गए हैं, अब मुझे पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस करने हैं. अब उसके लिए पावर चाहिए, वो पावर अभी हमें नहीं है, तो वो पावर आती है मेडिटेशन से, स्पेशली राजयोग मेडिटेशन से. देर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन नोन टू मैनकाइंड और राजयोग मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सशक्त करने वाली है, पावरिंग और एकदम इंस्टेंट कॉफी की तरह से काम करती है. इधर आपने मेडिटेशन करना शुरू किया और उधर से पावर भरनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे हम ये मेडिटेशन करते जाते हैं उससे हमारी थॉट्स की अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हाँ नेगेटिव या यूजलेस थॉट्स आ रहे हैं, अब इनको काउंटर करने के लिए मुझे पॉजिटिव थॉट्स बनाने हैं. और वो थॉट्स कैसे बनाने हैं ये हम राजयोग मेडिटेशन में सीखते हैं. और चौथी चीज है जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंटली शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि हमें हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति, क्योंकि हम बचपन से बड़े हुए हैं धीरे धीरे, पहले माँ बाप का सपोर्ट रहा है, एक फैमिली सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम रहा है, उसके बाद स्कूल में कॉलेज में टीचर्स का, फ्रेंड्स का, कोलीग्स बन जाते हैं और वर्क प्लेस पर भी कोलीग्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उनका सहारा रहता है जो जिंदगी भर, तो हमेशा किसी ना किसी सहारे के साथ जिए हैं. तो ये सहारा हमारा इंसानों का साथ रहना स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन हमें जो अकेलापन अब जो फोर्स्ड हो गया, चाहे मजबूरी हो गई और चाहे जबरदस्ती हो गया, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो हमें जो सॉल्यूशन निकालना है, हमें कोई ऐसा आइडियल सॉल्यूशन चाहिए जो कि हमेशा हमारे साथ हो और वो परमपिता परमात्मा के अलावा और कोई नहीं, गॉड ईश्वर अल्लाह एक ही ऐसा सहारा है जो हमारे पास हमेशा है. अब हम कह सकते हैं कि वो तो एक वर्चुअल है, दिखता तो है नहीं, हाँ भगवान की बातें तो सब करते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है. लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग जो राजयोग मेडिटेशन निरंतर अभ्यास करते हैं उन्होंने भगवान का सहारा महसूस किया है, एक साथी की तरह महसूस किया है, एक पक्के दोस्त की तरह महसूस किया है और उससे इतनी एनर्जी मिलती है कि वो एनर्जी किसी भी चीज में नहीं मिल सकती. और धीरे धीरे वो अभ्यास की बात है, जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे ये एक ऐसी आदत बन जाएगी कि आपको निरंतर उसका सहारा मिलेगा, आपको निरंतर उसकी प्रेजेंस महसूस होगी और कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा. और ये अभ्यास एक जो मैंने अपने जीवन में देखा, क्योंकि जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये मेरे जीवन में सारी सिचुएशन आई हुई है और मेरा अकेलापन करीब 5 साल से ज्यादा चला था और कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, और उसमें मुझे तुरंत ही मुझे सहायता मिली राजयोग मेडिटेशन से और मैंने 1 आवर डेली फॉर 7 डेज मेडिटेशन का कोर्स किया और तब देखा कि मुझे कितनी पावर मिली कि जिन चीजों पर मैं डिपेंडेंट था वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया परमात्मा की तरफ. एक शुरुआत होती है एक मन में कि हाँ मेरे साथ भगवान है, लेकिन वो रियलिटी इतनी रियल है कि उसको कोई नकारा नहीं ला सकता, ये एक अनुभव करने वाली चीज है. मेरे लिए लोनलीनेस एक बहुत बड़ा भाग्य बनाने वाली चीज बनकर आई, मेरे लिए तो एक वरदान साबित हुई. इट इज एक्चुअली ए बून एंड नॉट ए बेन दिस लोनलीनेस, बिकॉज इसने मेरे को न सिर्फ मुझे अंदर से शक्तिशाली बना दिया बट मुझे हमेशा के लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दिला दिया परमात्मा के रूप में जो कि जब भी मैं चाहूं मेरे साथ रहता है हमेशा और हर चीज में मेरी मदद करता है। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत फायदा होगा। और इस एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, इस थोड़े समय के लिए, मैं न सिर्फ मेडिकल इन ब्रह्मा कुमारी बल्कि अवेकनिंग टीवी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ये मौका दिया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको भी मेडिटेशन करके, राजयोग मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास करके, लोनलीनेस का पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा और आप कभी अकेले नहीं हैं। अब हम एक छोटी सी जर्नी पे चलते हैं लोनलीनेस को बीट करने के लिए। मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर के लिए, और यही अभ्यास जो चर्चा की थी, सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, हर भोजन ग्रहण करने से पहले जो हमें करनी है, और अपने थॉट्स को अवेयरनेस में लाने के लिए हमको जो मेडिटेशन का अभ्यास करना है, और वही अभ्यास जो हमारा कनेक्शन डायरेक्टली सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा ईश्वर के साथ लगा सकता है, उसका हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। आप कंफर्टेबली जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आराम से बैठ जाएं। अपने सारे विचारों को देखें, वो विचार आपके परिवार के बारे में, अपने कैरियर फ्यूचर के बारे में हो, चाहे वर्क प्लेस के बारे में हो, लॉकडाउन के बारे में हो, देश के, दुनिया के बारे में हो, सभी विचारों को एकदम से समेट कर फुल स्टॉप लगा दीजिए। मेरे सारे विचार एकदम शून्य हो गए। विचारों को शून्य करके अपने माथे के बीच में बरकुटी पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। I can only see the full stop. I have no thoughts whatever. ये full stop शून्य एक ज्योति बिंदु है, एक point of light है। पॉइंट ऑफ लाइट को माथे के बीच में महसूस कीजिए। वो पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे मेरी बुद्धि के बीच में जा रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए। और धीरे धीरे उससे निकलती हुई लाइट सारी बुद्धि में फैल रही है। पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उससे निकलती हुई लाइट सारी बुद्धि में फैल रही है। जैसे जैसे लाइट बुद्धि में फैलती जा रही है, मेरे विचार एकदम से समाप्त हो रहे हैं और मेरी बुद्धि में चारों तरफ शांति की किरणें फैल रही हैं। मेरे मन में चारों तरफ शांति के किरणें फैल रही हैं। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम एट पीस, आई हैव नो वरीज व्हाटसोएवर, आई हैव नो स्ट्रेस, नो टेंशन। I can control my thoughts. I am the master of my senses. Meri indriyan mere vash mein hai. Main apne sharir ka master hoon. Main apne vicharon ka master hoon. Main apne man ka aur buddhi ka bhi master hoon. Now visualize this light inside your mind, expanding your entire body. Light ki kirne, point of light se nikal kar, meri buddhi ko prakashit kar chuki hai, aur ab meri gardan, mere dono haath, मेरे चेस्ट एब्डोमेन, मेरे दोनों लोअर लिम्स, फीट तक प्रकाश पहुंचा रही है। एंड माय बॉडी इज फीलिंग लाइट एंड रिलैक्स्ड विद दिस लाइट। आई हैव नो थॉट्स, आई ओनली हैव लाइट inside my mind, my consciousness and my entire body. The light is filling me with enormous energy and relaxation. I am at 100% peace. Now let me come again back to the point of light in the center of my mind, and from there main is light ke madhyam se wapas apne forehead ke madhye mein aa gaya aur ek choti si journey ke liye chalta hu main point of light apne forehead se ऊपर आकाश की ओर तेजी से चलने लगता हूं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट अपने शरीर से निकलकर अपने शरीर को देखा, आसपास देखा और तेजी से बादलों की तरफ बढ़ चला। बादलों को पार करते हुए चांद सितारों से भी दूर, मैं बहुत दूर ऊपर की ओर जा रहा हूं जहां मुझे इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही है। सोर्स ऑफ एनर्जी इतने बड़ा पावर हाउस है, उससे मुझे लाइट मिल रही है और लाइट के साथ साथ पीस की और हैप्पीनेस की एनर्जी मिल रही है। और मैं लाइट चार्ज हो रही हूं। मुझे उस सोर्स ऑफ एनर्जी, परमपिता परमात्मा ईश्वर जो मेरा सच्चा साथी है, जन्म जन्म का साथी है, पिछले जन्म का भी साथी है, इस जन्म का भी और मेरे अगले जन्म का भी साथी है, जो कि मेरे सब साथ छूट गए लेकिन ईश्वर का साथ मेरे साथ हमेशा बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। मुझे उस ईश्वर से इनफाइनाइट रेस ऑफ एनर्जी मिल रही है और मैं लाइट चार्ज हो रही हूं और मुझे बहुत पावरफुल रिलैक्सेशन और शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे पूरा मन और बुद्धि, कॉन्शियसनेस, सुप्रा कॉन्शियसनेस, सभी बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। मुझे किसी की कमी महसूस नहीं हो रही है। आई एम नॉट फीलिंग लोनली एट ऑल। I always have the support of my Almighty Father, God. He is always there with me. He has always been with me. He will always be with me. अब अपना हाथ पकड़कर उस सुप्रीम पावर को अपने साथ रखेंगे और उसका हाथ पकड़कर, उसका साथ महसूस कर मैं वापस अपने शरीर में आ जाता हूं और उसका हाथ पकड़कर मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके साथ ही कर रहा हूं। चाहे मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं या मैं पेशेंट देख रहा हूं या अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूं, कभी किचन में जा रहा हूं, कभी ड्राइविंग कर रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, जो भी मैं देख रहा हूं, जो भी मैं सुन रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, मैं ईश्वर के साथ कर रहा हूं। उसका साथ इमेजिन कीजिए अपनी सारी डेली एक्टिविटीज में। और प्रॉमिस कीजिए कि मैं, हे भगवान, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मैं जो भी करूंगा आपके साथ करूंगा, आपके साथ देखूंगा, साथ सुनूंगा, साथ खाऊंगा, आपके साथ चलूंगा, आपके साथ ही बोलूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा और सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल थॉट है, मैं आपके साथ ही सोचूंगा। क्योंकि अगर आपके साथ सोचूंगा तो कभी गलत नहीं सोच सकता, कभी अकेला महसूस नहीं कर सकता। मैं आपके साथ ही हमेशा सोचूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। आपकी इनफाइनाइट रिलैक्सिंग पावर्स मेरे साथ रहेंगी और मैं जो भी दिन भर एक्टिविटी करूंगा आपके साथ ही करूंगा। मेरा अकेलापन, हे प्रभु, वरदान साबित हुआ है मेरे लिए कि मुझे आपका सानिध्य मिला, आपका साथ मिला, आपका सपोर्ट मिला, आपकी शक्तियां मिली और हमेशा मिलती रहेंगी। मुझे तो आपके साथ ही अकेले रहने में आनंद आता है, खुशी रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद परमपिता। आपका मेरे साथ होने के इस मेडिटेशन का अभ्यास अगर हम रोजाना दिन में 5 बार करेंगे और आदत डाल लेंगे तो हमें इतनी असीम शक्ति और शांति का सानिध्य प्राप्त होगा कि हम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकते। कोई मानसिक रोग और शारीरिक बीमारी हमसे कोसों दूर रहेगी। हमेशा हम एनर्जाइज्ड चार्ज्ड अप महसूस करेंगे। इस मेडिटेशन का अभ्यास जब भी समय मिले, जरूरी नहीं 5 मिनट करना है, आधा घंटा करना है, 1 मिनट, 10 सेकेंड, आधा मिनट, 2 मिनट, जब भी समय मिले जरूर कीजिए। एंड आप अपने थॉट्स को अवेयरनेस में लाके पहचान सकेंगे। जो उसका रिएक्शन है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा और आपका जीवन हमेशा के लिए, न सिर्फ ये जीवन बल्कि आने वाले सभी जीवन परिवर्तन हो जाएगा उनका, और आपका जीवन और आने वाले सभी जीवन इतने वरदानी साबित होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम शांति।